अगली हेडिंग है कर्म के भेद। कर्म के सिद्धांत में कर्मों का जो विभाजन किया जाता है वह मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का ही होता है। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले अशुभ कर्मों के मनु ने कायिक, वाचिक और मानसिक तीन भेद किए हैं। व्यभिचार, हिंसा और चोरी, इन तीनों को कायिक, कटु व मिथ्या भाषण, ताना मारना या चुगली करना और असंगत वचन, इन चारों को वाचिक तथा पराई चीजों को पाने की इच्छा, दूसरों का अहित चिंतन और परलोक में कुछ भी नहीं है ऐसा विश्वास, इन तीनों के मानसिक पाप को कर्म कहते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर मनु ने 10 प्रकार के पाप कर्मों का उल्लेख किया है। अपने समस्त कर्मों के 3 प्रमुख भेदों का उल्लेख किया है और वे हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक। गीता में भी कर्म के 3 भेद सात्विक, राजसिक और तामसिक किए गए हैं। जो कर्म फल की आशा त्याग कर बिना आसक्ति के स्वधर्मानुसार किए जाते हैं उन्हें सात्विक कहते हैं। फलाशा की इच्छा रखते हुए अहंकारपूर्ण मनोभावों से किया गया कर्म राजसिक है तथा तामसिक कर्म वह है जो मोह में बिना वर्तमान तथा भविष्य सोचे बिना किया जाता है। मनुस्मृति तथा गीता में उल्लिखित इन कर्मों के संबंध में हम आगे विस्तार पूर्वक विवेचन करेंगे, परंतु कर्म विभाग के संदर्भ में कर्म का जो भेद सामान्यतः किया जाता है वह उपरोक्त दोनों भेदों से भिन्न है। कर्म विपाक प्रकरण में कर्म के 3 भेद माने गए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म तथा संचीमान अथवा क्रियामान। इन 3 प्रकार के कर्मों को लोकमान्य तिलक ने इस प्रकार समझाया है, किसी मनुष्य के द्वारा इस क्षण तय किया गया जो कर्म चाहे वह इस जन्म में किया गया हो या पूर्व जन्म में, वह सब संचित अर्थात एकत्रित कर्म कहा जाता है। इसी संचित का दूसरा नाम अदृष्ट और मीमांसकों की परिभाषा में अपूर्व भी है। इन नामों के पढ़ने का कारण यह भी है कि जिस समय कर्म या क्रिया की जाती है उसी समय के लिए वह दृश्य रहती है, उस समय के बीत जाने पर वह क्रिया स्वतः शेष नहीं रहती किंतु उसके सूक्ष्म अतएव अदृश्य अर्थात अपूर्व और विलक्षण परिणाम ही बाकी रह जाते हैं। कुछ भी हो परंतु इसमें संदेह नहीं कि इस क्षण तक जो कर्म किए होंगे उन सबके परिणामों के संग्रह को ही संचित, अदृष्ट या अपूर्व कहते हैं। उन संचित कर्मों को एक साथ भोगना असंभव है क्योंकि इनके परिणामों के साथ परस्पर विरोधी अर्थात भले और बुरे दोनों प्रकार के कर्म जुड़े रहते हैं। उदाहरणार्थ कोई संचित कर्म स्वर्गप्रद तो कोई कर्म नरकप्रद हो सकता है, इसलिए इन दोनों के फलों को एक ही समय भोगना संभव नहीं है, इन्हें एक के बाद एक क्रमशः भोगना पड़ता है। अतएव संचित में से जितने कर्मों के फलों का भोगना पहले शुरू होगा उतने ही अंश को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध और संचित के अतिरिक्त कर्म का क्रियामाण नामक एक और तीसरा भेद है। क्रियामाण वर्तमान कालवाचक धातु साधित शब्द है और उसका अर्थ है जो कर्म अभी हो रहा है अथवा जो कर्म अभी किया जा रहा है। सर्वश्री चटर्जी तथा दत्ता ने उपरोक्त 3 कर्मों की विवेचना करते हुए लिखा है कि कर्म शब्द के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ में कर्म के नियम का बोध होता है और दूसरे अर्थ में कर्म से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसका बोध होता है। इसी शक्ति के द्वारा कर्म फल उत्पन्न होते हैं। दूसरे अर्थ के अनुसार कर्म के 3 भेद हैं, पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म तथा तीसरा संचयमान या क्रियामान कर्म। संचित कर्म उस कर्म शक्ति को कहते हैं जो अतीत कर्मों से उत्पन्न होते हैं किंतु जिसके फलों का प्रारंभ नहीं होता। प्रारब्ध कर्म भी पूर्व जीवन में ही उत्पन्न होता है किंतु उसके फलों का प्रारंभ इस जीवन में हो चुका रहता है या वर्तमान शरीर तथा धन संपत्ति क्रियामान कर्म उसे कहते हैं जिसका संचयन वर्तमान जीवन में होता है। हेडिंग कर्म के विभिन्न सिद्धांत। कर्म के संबंध में विभिन्न शास्त्रकारों ने अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। इनके सिद्धांतों को हम निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला मनु का सिद्धांत। मनु के अनुसार समस्त कर्म मन, वाणी तथा शरीर की ही उपज है और ये कर्म अच्छे तथा बुरे प्रभाव उत्पन्न करते हैं जिनके फलस्वरूप मनुष्यों की उत्तम, मध्यम या अधम गति प्राप्त होती है। इन्हीं मन, वाणी तथा शरीर के द्वारा मनुष्य विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों को कर सकता है। उदाहरणार्थ पहले मन को लीजिए। मनु के अनुसार अन्याय से पराई चीजों को लेने की इच्छा और मन से दूसरों का बुरा चाहना तथा परलोक में कुछ नहीं है, ऐसा विश्वास मन में पनपना यह तीन प्रकार का मन से संबंधित या मानस पाप कर्म है। कठोर और असत्य भाषण तथा सब प्रकार की चुगली और अनावश्यक बकवाद यह चार प्रकार की वाणी से उत्पन्न पाप कर्म है। उसी प्रकार अन्याय से दूसरे का धन लेना और शास्त्र के विधान के अतिरिक्त हिंसा तथा दूसरे की स्त्री से यौन संबंध स्थापित करना यह तीन प्रकार का शारीरिक पाप कर्म है। मन वाणी तथा शरीर से किए हुए शुभ अशुभ कर्म फल को मनुष्य क्रमशः अपने मन वाणी तथा शरीर से ही भोगता है। मनु के अनुसार शरीर के कर्म दोषों या पापों से मनुष्य वृक्षादि योनि, वाणी के कर्म दोष से पक्षी और मृग की योनि तथा कर्म मन के कर्म दोषों से चंडाली आदि कुल में उत्पन्न लेता है। एक व्यक्ति शुभ कर्मों से देवाभाव अशुभ शुभ अशुभ मिश्रित कर्मों के मनुष्य भाव को प्राप्त करता है तथा केवल अशुभ कर्मों से नीच योनियों में जन्म लेता है। मनु ने यह भी लिखा है कि मनुष्य की सत्व गुण वाले कर्मों को सर्वाधिक, रजोगुण वाले कर्मों को उससे कम तथा तमोगुण वाले कर्मों को सबसे कम करना चाहिए। मनु के अनुसार इसका अभ्यास तप ज्ञान शौच इंद्रियों का निग्रह धर्म क्रिया और आत्ममनन ये सत्व गुण के लक्षण हैं। आरंभ में रुचि होना, फिर अधैर्य निषिद्ध कर्म को पकड़ना और निरंतर विषय भोग ये राजगुण के लक्षण हैं। लोभ नींद अधीरता क्रूरता नास्तिकता अनाचारीपन याचना स्वभाव और प्रसाद ये तमो गुण के लक्षण हैं। कर्म से संबंधित इन तीनों के लक्षण इस प्रकार हैं। जिस कर्म को करके और करते हुए तथा आगे करने का विचार करते हुए अर्थात तीनों काल में लज्जा का अनुभव होता है उन सबको तमोगुण का लक्षण मानना चाहिए। जिस कर्म से व्यक्ति इस लोक में बहुत असिद्धि चाहता है और असिद्धि में शोक नहीं करता वह राजस है, और जिस कर्म को सर्वथा जानने के लिए इच्छा करता है और जिस कर्म को करता हुआ लज्जित नहीं होता तथा जिस कर्म से व्यक्ति के मन को आनंद हो वह सत्वगुण का लक्षण है। तम का प्रधान लक्षण काम है, रंज का प्रधान लक्षण अर्थ कहलाता है तथा सत्व का प्रधान लक्षण धर्म है। इनमें सत्व या धर्म सबसे श्रेष्ठ है, उनके बाद क्रमशः रज तथा तम का स्थान है। इसलिए मनुष्य को अधिकाधिक उन कर्मों को करना चाहिए जो कि धर्म के अनुकूल हैं या जो सत्व गुण वाले हैं, क्योंकि मनु के अनुसार सात्विक कर्म करने वाले को देवत्व गति प्राप्त होती है, जबकि राजस तथा तामस कर्म करने वाले को क्रमशः मनुष्यत्व गति निकृष्ट गति या तिर्यक वृक्ष पशु पक्षी आदि की योनि प्राप्त होती है। मनु ने विभिन्न प्रकार के अधम या बुरे कर्मों के फल या परिणामों का भी सविस्तार उल्लेख किया है। कुत्ता सुअर गधा ऊंट बैल बकरा भेड़ मृग पक्षी चांडाल और पुक्कश योनि को ब्राह्मण हत्यारा प्राप्त होता है। मद्य पीने वाला ब्राह्मण कीड़े मकोड़े पतंगा मैला खाने वाले पक्षियों और हिंसा करने वाले पशुओं की योनि को प्राप्त होता है। चोरी करने वाला ब्राह्मण मकड़ी सर्प गिरगिट तथा हिंसा करने वाले पिशाचों की योनियों को हजारों बार प्राप्त होता है। गुरु पति से यौन संबंध स्थापित करने वाला बाल घास गुल्म लता कच्चे मांस को खाने वाला तथा क्रूर कर्म करने वाले का जन्म सैकड़ों बार होता है। चंडाल की स्त्री से यौन संबंध स्थापित करने वाले कच्चे मांस के खाने वाले होते हैं। पतितों के साथ रहने और पराई स्त्री से मैथुन करने तथा ब्राह्मण का धन चुराने से व्यक्ति ब्राह्मण राक्षस होता है। मणि मोती मूंगा आदि रत्नों को चुराने से हेमकार पक्षी, धान्य को चुराने से चूहा, कांसे को चुराने से हंस, पीने के पानी को चुराने से चातक पक्षी और घृत को चुराने से व्यक्ति नेवला होता है। चारों वर्ण बिना आपत्ति अपने नित्य कर्म को न करने से कुत्सित योनि को प्राप्त होकर फिर शत्रुओं के दासत्व को प्राप्त होते हैं। अपने कर्म से भ्रष्ट ब्राह्मण मरकर बमन तथा सौ को भोजन कराने वाला होता है। स्वकर्म भ्रष्ट क्षत्रिय पुरीष और सौ का भोजन करने वाला, स्वकर्म भ्रष्ट वैश्य पीप का भक्षण करने वाला तथा स्वकर्म भ्रष्ट शूद्र कपड़े के जू आदि खाने वाला होता है। शुभ या उत्तम कर्म कौन कौन से हैं तथा उनको करने से क्या फल मिलता है इसका भी उल्लेख मनु ने किया है। उनके अनुसार वेद का अभ्यास तप ज्ञान इंद्रियों को रोकना तथा हिंसा न करना और गुरु की सेवा करना ये परम कल्याणकारी कर्म है। इन सब में आत्मज्ञान सबसे अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि उससे मोक्ष प्राप्त होता है। इस लोक तथा परलोक में भोगार्थ जो कामना से कर्म किया जाता है उसको मनु के अनुसार प्रवृत्त कहते हैं, और जो निष्काम तथा ज्ञानपूर्ण किया जाता है उसको निवृत्त कहते हैं। निवृत्त प्रवृत्त कर्म करने से देवताओं के साम्य को प्राप्त होता है तथा निवृत्त कर्म से पंचभूतों को लांग कर मोक्ष प्राप्त होता है। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा से सब भूतों को बराबर देखने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। बिना पढ़ने वालों से ग्रंथ को पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे भी ग्रंथ को कंठस्थ करने वाले तथा उनसे भी उसके अर्थ को जानने वाले और अर्थ ज्ञानियों के अनुष्ठान करने वाले अधिक क्रमशः श्रेष्ठ हैं। तप और विद्या ब्राह्मण का परम कल्याणप्रद कर्म है। तप से पाप दूर होता है और विद्या से मोक्ष प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत दूसरी हेडिंग है याज्ञ वल्क्य का सिद्धांत। याज्ञ वल्क्य मनु द्वारा प्रस्तुत कर्म तथा उसके फल के संबंध में उपरोक्त विचारों से सहमत हैं। याज्ञ वल्क्य स्मृति में टीकाकार श्री बालम भट्ट के अनुसार धर्म एवं अधर्म कर्म के संचय के परिणाम या फल हैं। दूसरे शब्दों में कर्म के संचय के फल स्वरूप ही हमें धर्म या अधर्म, उत्तम या अधम गति, अवस्था या स्थिति प्राप्त होती है। कर्म के इस संचय से जो परिणाम उत्पन्न होते हैं या जो फल व्यक्ति को प्राप्त होता है उन्हें निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। और जाति अर्थात उच्च या निम्न जाति में जन्म यानी उत्तम या अधम योनि को प्राप्त होना। ब आयु अर्थात जीवन का दीर्घ या अल्प विस्तार यानी ज्यादा या कम आयु को प्राप्त होना। तथा स भोग अर्थात आनंद अथवा कष्ट उठाना। मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्मों का संचय करना चाहिए जिससे कि उत्तम योनि, दीर्घायु तथा आनंद की प्राप्ति उसके लिए संभव हो सके। याज्ञवल्क्य के अनुसार उचित कर्मों या सत्कर्मों का पालन ही मनुष्य का धर्म है। यह धर्म विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों में अवस्थान करने वालों के लिए अलग अलग है। उदाहरणार्थ ब्राह्मण का प्रमुख कर्म ज्ञान का संचय तथा उसका वितरण करना है, जबकि क्षत्रिय का उचित कर्म जनरक्षा है। वैश्य का धर्म अर्थ से संबंधित है तथा शूद्र का धर्म सेवा से। याज्ञवल्क्य के अनुसार राजा का यह कर्तव्य है कि यदि कोई भी वर्ण, परिवार, वंश, संप्रदाय आदि अपने उचित धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म से हट गया है तो उसे दंड देकर एवं फिर उसे उचित रास्ते पर लाए। इस प्रकार ब्राह्मण चर्याश्रम की अवस्था में बाल बल वीर्य ज्ञान का संचय करना, गुरु सेवा तथा गुरु की आज्ञा का पालन करना ही व्यक्ति का सबसे उचित कर्म या धर्म है। गृहस्थी के लिए गृहस्थ धर्म का पालन ही उचित कर्म तथा शुभ फलदायक धर्म है। याज्ञवल्क्य ने सामान्य तौर पर कुछ उचित कर्मों का उल्लेख किया है, जैसे बलि, धार्मिक कृत्य व संस्कार, अनुशासन, किसी को हानि न पहुंचाना, दानशीलता तथा वेदों का अध्ययन। तीसरी हेडिंग है शुक्र नीति सार का सिद्धांत। शुक्र नीति सार के अनुसार एक व्यक्ति का वर्तमान जीवन उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के द्वारा घटित होता है। दूसरे शब्दों में पूर्व जन्म के कर्मों के प्रतिफलन के रूप में ही मनुष्य का वर्तमान जीवन होता है। यद्यपि इसमें दैव का भी बहुत कुछ हाथ हुआ करता है, इस अर्थ में जीवन में प्रत्येक वस्तु दैव एवं कर्म पर आधारित है। कर्म दो भागों में विभाजित है, एक तो वे कर्म जो पूर्व जन्म या जन्मों में किए गए हैं और दूसरे वे कर्म जो कि इस जन्म में व्यक्ति ने किए हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार के कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। शुक्र नीतिसार ग्रंथ में यह स्वीकार किया गया है कि जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करने में दैव भी एक करता है जो कि मनुष्य के भाग्य को निश्चित करता है। लेकिन उसका यह तात्पर्य नहीं कि भाग्य ही पूर्ण रूप से यह निश्चित करता है कि व्यक्ति क्या है या क्या होगा। इसका यह भी अर्थ नहीं कि व्यक्ति को किसी वस्तु के लिए प्रयत्न या परिश्रम नहीं करना चाहिए अथवा उसे अकर्मण्य जीवन बिताना चाहिए। वास्तव में प्रयत्नशीलता जीवन की गति है और उस गति को किसी भी व्यक्ति को नहीं रोकना चाहिए। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को इस बात का यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए कि वह ऐसे कर्मों को करे जिससे उसका जीवन उन्नत हो सके अथवा उसके भविष्य के भाग्य में आवश्यक परिवर्तन हो सके। कुछ विद्वानों का कहना है कि शुक्र नीतिसार में दैव एवं कर्म की अवधारणा अस्पष्ट और अनिश्चित है। मानव जीवन को इन दो अनिश्चितताओं के बीच रख देना उचित नहीं है। कर्म और भाग्य ये दोनों विरोधी तत्व हैं और एक ही सिद्धांत के अंतर्गत इनको सम्मिलित करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से न तो कर्म का सिद्धांत पूरा होता है और न ही भाग्य का। इस शंका का समाधान याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि रथ दो पहियों से न कि एक पहिए से चल सकता है। उसी प्रकार प्रयत्न कर्म एवं भाग्य रूपी दो पहियों से मानव जीवन रूपी रथ चलता है। चौथी हेडिंग है पतंजलि योग सूत्र का सिद्धांत। पतंजलि के अनुसार मनुष्य के कष्टों का मूल कारण अविद्या है। इसके साथ ही जन्म एवं मृत्यु भी मानव क्लेश के कारण ही है। ज्ञान की अनुपस्थिति अविद्या नहीं है, बल्कि अविद्या का अर्थ है असत्य एवं मिथ्या ज्ञान, जो कि उचित एवं वास्तविक ज्ञान के एकदम विपरीत है। अविद्या के चार भेद हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं: क अस्मिता अर्थात अपने के संबंध में अनावश्यक रूप से उच्च धारणा को बनाए रखना, यानी स्वयं को अत्यधिक महत्व देना। ख राग अर्थात उन वस्तुओं के प्रति झुकाव होना एवं उन वस्तुओं को खोजना जो सांसारिक आनंद को देती है। ग द्वेष अर्थात वस्तुओं का घृणापूर्वक त्याग करना जो दुख देती है। घ अभिनिवेश जीवन के प्रति अत्यधिक मोह एवं मृत्यु का भय। ये चार प्रकार की अविद्याएं हैं जो कि नाना प्रकार के क्लेशों को जन्म देती हैं। ये सारे क्लेश दूर किए जा सकते हैं यदि अविद्या को दूर किया जाए, तथा उचित ज्ञान एवं योग की सहायता द्वारा अविद्या को दूर किया जा सकता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि योग का अर्थ प्रयत्न अथवा तरीका या पद्धत या प्रयत्न की व्यवस्था, जिसकी सहायता से ईश्वर एवं मनुष्य के बीच संयोजक चिन्ह स्थापित किया जाता है। पतंजलि के अनुसार अंतहीन कर्म एवं जन्म के चक्र को समाप्त करने का साधन केवल ज्ञान ही है। ज्ञान प्राप्ति से कर्म समाप्त नहीं हो जाते, लेकिन कार्य करने वालों के लिए उन कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है या घट जाता है। ज्ञान प्राप्ति से योगी धर्म मेघ बन जाता है। यह योगी शब्द उन व्यक्तियों के प्रति संकेत करता है जो कर्मों के प्रतिफल की आशा त्याग देते हैं, अर्थात जो किसी फल की प्राप्ति के लिए ही कर्म नहीं करता, वह कर्म संन्यासी या कर्म योगी है। ये चार प्रकार की अविद्याएं हैं जो कि नाना प्रकार के क्लेशों को जन्म देती हैं। ये सारे क्लेश दूर किए जा सकते हैं यदि अविद्या को दूर किया जाए, तथा उचित ज्ञान एवं योग की सहायता द्वारा अविद्या को दूर किया जा सकता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि योग का अर्थ है प्रयत्न अथवा तरीका या पद्धति या प्रयत्न की व्यवस्था, जिसकी सहायता से ईश्वर एवं मनुष्य के बीच संयोजक चिन्ह स्थापित किया जाता है। पतंजलि के अनुसार अंतहीन कर्म एवं कर्म के चक्र को समाप्त करने का साधन केवल ज्ञान ही है। ज्ञान प्राप्ति से कर्म समाप्त नहीं हो जाते, लेकिन कार्य करने वालों के लिए उन कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है या घट जाता है। ज्ञान प्राप्ति से योगी धर्म मेघ बन जाता है। यह योगी शब्द उन व्यक्तियों के प्रति संकेत करता है जो कर्मों के प्रतिफल की आशा त्याग देते हैं, अर्थात जो किसी फल की प्राप्ति के लिए ही कर्म नहीं करता, वह कर्म संन्यासी या कर्म योगी है, जिसने कर्म करना तो छोड़ा नहीं, परंतु अपने कर्मों के फलों पर अपने अधिकार का त्याग कर दिया है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कर्म योगी कर्म को त्यागता नहीं, न ही कर्म करना छोड़ देता है, वह तो केवल अपनी इच्छाओं अर्थात अपने कर्मों के फल की इच्छाओं का त्याग कर देता है। कर्मयोगी बिना किसी प्रतिफल की आशा के कर्म करता है। पतंजलि के अनुसार जब तक कर्म के प्रतिफलों की आशा की जाती है, तब तक आवागमन का चक्र चलता रहता है। प्रतिफल की आशा त्यागते ही परम शांति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांचवा, जन दर्शन का सिद्धांत। इसके अनुसार जीव की अंतर्निहित प्रवृत्तियों के द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है, अर्थात जीव अपने कर्मों या संस्कारों के बस ही शरीर धारण करता है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अर्थात पूर्व जन्म के विचार वचन तथा कर्म के कारण जीव में वासनाओं की उत्पत्ति होती है। वासनाएं तृप्त होना चाहती हैं। फल यह होता है कि इनकी क्रियाशीलता के कारण एक विशेष प्रकार का शरीर बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनों के अनुसार जीव अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करता है। शरीर से केवल स्थूल शरीर नहीं समझना चाहिए, बल्कि शरीर से इंद्रिय मन तथा प्राण का भी बोध होता है, जिसके कारण जीव के स्वाभाविक गुण अभिभूत हो जाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार माता पिता से व्यक्ति को जो शरीर मिलता है उसे आकस्मिक नहीं समझना चाहिए। कर्म से ही यह निश्चित होता है कि एक व्यक्ति का जन्म किस वंश या किस परिवार में होगा। कर्मों से ही शरीर का रूप रंग आकार आयु ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रियों की संख्या उनके विशेष धर्म निर्धारित होते हैं। शरीर के कारण रूप कर्मों एवं उनके सभी धर्मों को हम समष्टि और व्यष्टि से विचार कर सकते हैं। समस्त दृष्टि से कर्म समस्त वासनाओं का एक समूह है, जिसका फल समस्त धर्म विशिष्ट शरीर है, किंतु व्यष्टि दृष्टि से शरीर का विशेष विशेष धर्म विशेष विशेष कर्म का फल है। जैन दर्शन के अनुसार कर्मों की संख्या अनेक है, उसने प्रत्येक कर्म का नामकरण उसके फल के अनुसार किया है। जो कर्म यह निश्चित करता है कि व्यक्ति का जन्म किस गोत्र में रहेगा, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। जो कर्म आयु निश्चित करता है, उसे आयु कर्म कहते हैं। जो ज्ञान को नष्ट करता है, उसे ज्ञान वर्णीय कर्म कहते हैं। जो विश्वास को नष्ट करता है, उसे दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। और जो मोह को उत्पन्न करता है, उसे मोहनीय कर्म तथा जो दुख की वेदना उत्पन्न करता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। कर्मानुसार ही व्यक्ति के लिए बंधन या मुक्ति का निर्धारण होता है। अतः सत्कर्म और ज्ञान ही मानव जीवन का ध्येय होना चाहिए। छठवीं हेडिंग है बौद्ध दर्शन का सिद्धांत। इसके अनुसार वर्तमान जीवन पूर्ववर्ती जीवन के कर्मों का ही फल है, साथ ही वर्तमान जीवन के कर्मों का भविष्य जीवन के साथ भी वही संबंध है जो पूर्ववर्ती जीवन के कर्मों का वर्तमान जीवन से है। वर्तमान जीवन के कर्मों के कारण ही भविष्य जीवन की उत्पत्ति होती है, साथ ही वर्तमान जीवन के कर्मों का फल भविष्य में मिलता है। महात्मा बुद्ध का उपदेश है कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तरह का कर्म राग द्वेष तथा मोह के कारण होता है, दूसरे तरह का कर्म बिना राग द्वेष तथा मोह के से उत्पन्न होता है। प्रथम प्रकार का कर्म हमारी विषयानुरक्ति अर्थात विषय के प्रति आकर्षण की वृद्धि करता है तथा ऐसे संस्कारों को पैदा करता है जिनके कारण जन्म ग्रहण करना ही पड़ता है। दूसरे प्रकार का कर्म अनासक्त भाव से तथा संसार को अनित्य समझकर किया जाता है, जिससे पुनर्जन्म की संभावना नहीं रह जाती। साधारण ढंग से यदि बीज को बोया जाए तो पौधे की उत्पत्ति होती है, किंतु यदि बीज को अग्नि में तपा लिया जाए तो उसके बोने से पौधे की उत्पत्ति की संभावना नहीं रहती। उसी तरह राग द्वेष तथा मोह से प्रेरित होकर कर्म करने से पुनर्जन्म हो जाता है, किंतु अनासक्त भाव से कर्म करने से जन्म ग्रहण का चक्र छूट जाता है। अनासक्त कर्म से ही निर्वाण प्राप्त होता है और निर्वाण से पुनर्जन्म और दुखों का अंत तथा जीवन काल में ही शांति प्राप्त होती है। निर्वाण का ध्येय कर्म का त्याग नहीं बल्कि उच्चतर कर्मों को ग्रहण करना है। अपने संबंध में महात्मा बुद्ध ने कहा था कि निर्वाण प्राप्ति के बाद बिल्कुल निष्क्रिय रहने की उनकी इच्छा थी, यहाँ तक कि दूसरे को निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बतलाने की भी उनकी इच्छा नहीं थी। किंतु दुख से पीड़ित मानव के लिए उनके हृदय में दया का संचार हुआ और वे लोक कल्याण के कर्म में लग गए। जिस नौका के द्वारा उन्होंने स्वयं दुख समुद्र को पार किया था, उसको नष्ट कर देना उन्होंने उचित नहीं समझा, बल्कि उन्होंने जनसाधारण के कल्याण लगा दिया। सातवीं हेडिंग है वेदांत दर्शन का सिद्धांत। इसके अनुसार मनुष्य जीवन में कर्म के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मोक्ष प्राप्त हो जाने पर भी शरीर रह सकता है, क्योंकि वह प्रारब्ध कर्मों का फल है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, क संचित कर्म अर्थात पूर्व काल के वे कर्म जो जमा है, ख प्रारब्ध कर्म अर्थात पूर्व काल के वे कर्म जिनका फल भोग रहा है, और ग क्रियामार या संचयी मार कर्म अर्थात वे नए कर्म जो इस जीवन में जमा हो रहे हैं। तत्व ज्ञान से संचित कर्म का क्षय तथा क्रियामार कर्म का निवारण होता है और इस तरह पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, किंतु प्रारब्ध कर्म का निवारण नहीं किया जा सकता। उसका फल भोगने के लिए यह शरीर जो प्रारब्ध कर्म का ही फल है जारी रहता है, और जब प्रारब्ध की शक्ति समाप्त हो जाती है तब शरीर का भी अंत हो जाता है। जिस तरह कुम्हार का चाक दंड उठा लेने पर भी कुछ देर तक घूमता रहता है और फिर घूमते घूमते वेग शांत होने पर अपने आप से रुक जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रारब्ध कर्म का वेग या शक्ति जब तक रहती है जब तक शरीर भी निरंतरता बनी रहती है, पर जब यह वेग समाप्त हो जाता है तो शरीर का भी अंत हो जाता है। जब स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अंत हो जाता है तब जीवन मुक्त की उस अवस्था अर्थात जीवित अवस्था में ही मुक्ति पा जाना को विदेह मुक्ति कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि वेदांत दर्शन के अनुसार पूर्व काल के कर्मों का फल मनुष्य को अनिवार्यतः भोगना पड़ता है, और इस भोग के बाद ही मुक्ति संभव है। फिर भी ज्ञान के द्वारा इसके प्रभाव को कम या समाप्त किया जा सकता है। साथ ही आसक्ति पूर्वक किया हुआ कर्म ही बंधन का हेतु है, परंतु पूर्ण ज्ञान और पूर्णानंद प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति अनासक्त होकर कर्म कर सकता है। कराचार्य इस निष्काम कर्म को बहुत अधिक महत्व देते हैं। जिसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, उसे आत्मशुद्धि के लिए ऐसा कर्म करना आवश्यक है। अहंकार और स्वार्थ के बंधन से क्रमशः मुक्त होने के लिए निष्काम कर्म आवश्यक है, न कि निष्क्रियता। जो तत्व ज्ञान या मुक्ति पा चुका है, उसे भी दूसरे बंधन प्राप्त जीवों के कल्याण के लिए निस्वार्थ कर्म करना चाहिए। मुक्तात्मा पुरुष का आचरण या कर्म समाज के लिए आदर्श होना चाहिए, जिसका और लोग भी अनुसरण कर सकें। उसे निष्क्रियता या कुकर्म का अवलंबन कदापि न करना चाहिए। शंकराचार्य लोक सेवा के कर्म को मुक्ति के पक्ष में बाधक नहीं अपितु साधक समझते हैं। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में इस आदर्श का पालन दिखाया। स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक आदि नवीन वेदांति भी इसी आदर्श का अनुमोदन करते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सेवामय कर्म ही ईश्वर की आराधना है। मरना तो एक दिन है ही, पर सेवामय कर्म करते हुए मरना मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है।